ओम शांति। As we have seen in the last 3 days, every time we begin a session, we begin with silence, and every time we end a session, we end with silence. Now this can be done for everything that we do, whether it's a meeting, whether it's obviously like we saw yesterday, a surgery, whether it is anything which you feel requires a pure and powerful state of mind, in which decision making should be accurate, anything which requires clarity of thinking, anything which requires harmony of energy between the people involved, should begin and end with silence. As you have seen in the campus in the 3 days, after every 1 hour there was a traffic control. तो हम क्या करते हैं कि जब ऐसे बैठे होते हैं, बात भी कर रहे हैं, मीटिंग भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, और अगर बीच में वो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, तो हम जो कर रहे हैं उसमें रुक जाते हैं। एंड उसका रिजल्ट ये देखा कि जैसे कभी कुछ बात हो रही है, सोल्यूशन नहीं निकल रहा, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा, मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच नहीं कर रहा, और उसके बीच में वो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज जाता है और दो लोग साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंट होते ही, अपनी थॉट्स को चेंज करते ही, जब उस गीत के बाद वापस कॉन्वर्सेशन में आते हैं, तो कॉन्वर्सेशन का कंटेंट और एनर्जी दोनों बदल जाता है। सो इट्स अ वेरी 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 पावरफुल टेक्निक, जस्ट टू पॉज, विथड्रॉ, connect to your original self and come back. Because if we don't take those few minutes, then we are working through the top layer of the mind. And if we take these few minutes of silence, then we are working from the intuitive mind. Ek hai sagar ki upar ki lehre aur ek hai sagar ka tala. तो ऊपर की लहरें कैसी होती हैं? सागर के ऊपर की लहरें कैसी होती हैं? दैट इज हाउ आर ऊपर का माइंड इज टर्बुलेंट। और सागर की तले कैसी होती हैं? शांत। तलों में क्या मिलता है? वहां क्या पड़ा हुआ है? वहां क्या पड़ा है? सिर्फ शांत है वो नहीं, वहां पड़ा क्या है? पर्ल्स। आपके वो नीचे शांति में क्या पड़ा हुआ है? क्या पड़ा है वहां? वहां पड़ा है ज्ञान के पर्ल्स पड़े हुए हैं। हर एक को, कोई ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं होता क्या राइट है क्या नहीं है, लेकिन वो विजडम जो नीचे है वो कभी कभी ऊपर की बातों से ढक जाती है, और फिर जब हमें डिसीजन लेना होता है तो हम औरों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? आंसर किसको पूछना चाहिए? आंसर किसको पूछना चाहिए? इंट्यूशन। इन ट्यूशन, एक ट्यूशन क्लास है जो अंदर चलती है, टीचर बैठा है, लेकिन वो टीचर कहाँ है? 2 मिनट साइलेंस पे बैठेंगे तब मिलेगा वो टीचर। तो कोई भी डिसीशन लेने से पहले ये 2 मिनट साइलेंस एक्सपेरिमेंट करके देखना शुरू करें। आपका लॉजिकल माइंड एक आंसर देगा, और आप 2 मिनट साइलेंस अगर करेंगे शायद आपको दूसरा आंसर मिलेगा। एंड इवन फॉर स्मॉल थिंग्स, just now 10 minutes back, looking at the weather. We were contemplating whether to go by train or by flight. And I was like, train, flight. Aisa hoga, waisa hoga, aisa kare, aisa kare. I said, let's go and sit in Baba's room for 2 minutes. And three people went. And when three people came out, they had one opinion. Before going in, all three were different. Different means everyone was right, but everyone had, aisa karenge to aisa ho jayega, ye karenge to ye ho jayega, wo karenge to wo ho jayega. Itne logon ne jana hai, 25 logon ne us flight se jana hai, nahi ho, to 25 logon ko sambhalna hai. Kaise karenge? So three people went inside only for 2 minutes. Only for 2 minutes. Came out and everybody had the same answer. This has happened just 10 minutes before coming into this hall. So that 2 minutes is very important. 2 minutes to connect to your own intuition, and most important, 2 minutes to ask. 2 minutes to ask Him. Parmatma ka gyan aur shakti hamesha humare saath hoti hai. Wo to constantly de raha hai. God is like the sun. वो कॉन्स्टेंटली रेडिएट कर रहा है, लेकिन उसकी पावर को कैच करने के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी, वो तो सबको दे रहा है, वो ऐसे थोड़ी है इसको दे रहा है इसको नहीं दे रहा, जो मेडिटेशन रूम में बैठा है उसको दे रहा है, जो बाहर बैठा है उसको नहीं दे रहा, ऐसा थोड़ी है, वो तो कॉन्स्टेंट है. लेकिन उसको कैच करने के लिए हमारी माइंड क्या होनी पड़ेगी, ऊपर का स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन, उसको साइलेंट होना पड़ता है. इसलिए दैट 2 मिनट्स साइलेंस. दीज आर वेरी वेरी स्मॉल प्रैक्टिसेस विच विल एंड शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल फ्रॉम टुमारो. एंड जब आप ये करना शुरू करेंगे, आपको कभी भी किसी और को जाके पूछना नहीं पड़ेगा आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए. क्योंकि अगर कोई आंसर दे भी दे, इम्प्लीमेंट तो फिर भी हमको करना है. तो जिसको इम्प्लीमेंट करना होता है उसी को डिसीजन लेना चाहिए. राइट, चलिए अब 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, अपने जीवन को देखें, सीन आफ्टर सीन. आई राइट अ स्क्रिप्ट फॉर माई लाइफ. How do I want my life to be? I write a script for my family. How do I want their life to be? हम सब कुछ प्लान करते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा. चलते चलते कोई ऐसी एक सीन आती है कि स्क्रिप्ट बदल जाती है. सोचा कुछ और था, होता कुछ और है. किसी पर बहुत विश्वास किया और फिर भी धोखा मिला. किसी के लिए कुछ नहीं किया और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया. कभी बहुत मेहनत की, रिजल्ट नहीं मिला, और कभी कोई मेहनत नहीं की और बहुत रिजल्ट मिल गया. ये कैसे होता है? मेरा भाग्य कौन लिखता है? अगर मुझे आज अपने भाग्य में, अपने जीवन की प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ चेंज करना है तो मुझे किसके पास जाना है? Who is the creator of my destiny? बचपन से एक बहुत डीप बिलीफ सिस्टम सिंस चाइल्डहुड हमारे अंदर पड़ा हुआ है, एंड दैट इज जो कुछ होता है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है ना? ये बिलीफ सिस्टम, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माय लाइफ इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। यहां तक मानते आए कि पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, और इसीलिए जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम कहते हैं परमात्मा की मर्जी, कहते हैं ना ऐसा। किसी के घर उनके यंग बच्चे की डेथ होती है, आप जाकर उनको कहो ये परमात्मा की मर्जी थी, कैसा लगेगा? ऐसा परमात्मा कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कई बार बिलीफ सिस्टम सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते जेनरेशन टू जेनरेशन पास डाउन होते होते हम उसका सही जो अर्थ होता है कई बार मिस कर जाते हैं, और उसको जस्ट एज अ लाइन हम ले लेते हैं, उसको एज इट इज मानते हैं और उसी को नेक्स्ट जेनरेशन को भी हैंड ओवर कर देते हैं कि जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। हम कभी एक मिनट पॉज करके ये भी नहीं सोचते हैं कि आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, पिछले हफ्ते में इंडिया में जो कुछ हुआ, ये सब वो बैठकर ऊपर से करवाएगा? ऐसा करवाएगा वो? Yes. जो कुछ सुना पड़ा उसको साइड पे रखते हैं, सिर्फ लॉजिकली चेक करते हैं। आज आप में से मोस्ट ऑफ द लोग पेरेंट्स हैं, क्या आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे के भाग्य में 100 बुखार भी लिखते हैं क्या? गिवन अ चॉइस टू राइट डेस्टिनी ऑफ योर चाइल्ड, व्हाट विल यू राइट द डेस्टिनी ऑफ द चाइल्ड? नथिंग बट परफेक्ट। You won't even just write it okay. You will say everything should be perfect and more than perfect. How can a parent write pain in the destiny of a child? How can a parent write disease in the destiny of a child? How can a parent write divorce in the destiny of a child? And yahan to aaj bahut kuch ho raha hai hamare jeevan mein. Sabse zyada aap dekhte hain जब आपके हॉस्पिटल में इतने लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। द अदर डे आई वेंट टू अ हॉस्पिटल एंड आई जस्ट एंटर्ड एंड देयर वाज अ कपल देयर एंड द ब्रदर कम्स अप टू मी एंड सेड मेरी 3 साल की बेटी को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ आज, एंड ही सेड डॉक्टर ने कहा सर्जरी करो। मैंने बोला तो ठीक है ना, वो कहा आप करवाओ सब ठीक हो जाएगा। ही सर लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ब्रेन का है, कुछ भी हो सकता है उसके बाद। फिर वी आर टॉकिंग ऑफ अ 3-year-old चाइल्ड, तो ये क्या वो बैठकर करेगा ऊपर से ये सब? वी नीड टू पॉज एंड थिंक एंड द बिलीफ सिस्टम नीड्स टू बी चेक्ड, कि चाहे वो एक नेचुरल कलामिटी है, चाहे वो ये मैनमेड टेरर है, चाहे वो डिजीज है, चाहे वो अनटाइमली डेथ है, चाहे वो वायलेंस है एंड द अदर थिंग्स, ये परमात्मा बैठकर डेस्टिनी लिख रहा है तो दुनिया का ये हाल है। अगर परमात्मा इस दुनिया की डेस्टिनी लिखता तो दुनिया कैसी होती? कैसी होती? वन वर्ड में परफेक्ट होती ना, उससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकती थी। एक और बिलीफ सिस्टम बचपन से सुना, दो बिलीफ सिस्टम सुने हुए। दूसरा था जैसा कर्म वैसा फल, वो भी सुना, वो भी सुना। एक तरफ से कहा जैसा कर्म वैसा फल, और एक तरफ से कहा जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। हमने कभी रुक के ये भी नहीं चेक किया कि दोनों कैसे हो सकते हैं। सी हाउ हम वो जो हर बात पे लॉजिक नहीं, ऐसे कैसे, प्रूफ करो, ये सब कुछ करते हैं। हमने दो कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीफ सिस्टम सुने हैं सारी उम्र, एंड वी नेवर क्वेश्चन्ड कि हाउ बोथ आर पॉसिबल। वी जस्ट हर्ड बोथ द बिलीफ सिस्टम्स एंड वी सेड यस, हुआ या नहीं हुआ? यहां परमात्मा खड़ा है, ठीक है। अभी विजुअलाइज करते हैं। एक बिलीफ सिस्टम कहता है जो कुछ हो रहा है वो इसकी मर्जी से हो रहा है, दैट्स वन बिलीफ सिस्टम। अगर वो बिलीफ सिस्टम ट्रू है कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो सारी पावर किसके पास? इसके पास। हमारी जिम्मेवारी क्या? हमारी जिम्मेवारी क्या? कुछ भी नहीं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इसकी। वन बिलीफ सिस्टम। सेकेंड बिलीफ सिस्टम, जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? सारी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी? कुछ भी नहीं। देखो कितना डिफरेंट है, डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। और हमने दोनों को सुना और दोनों के लिए हां किया। अब अगर ये बिलीफ सिस्टम क्लियर नहीं होगा हमें, तो फिर जीवन में जब भी कोई सीन आएगी तो हम उसको ही क्वेश्चन मार्क कर देंगे कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अपने जीवन में जो कर्म करने हैं वो करते रहेंगे, और जब कोई ऐसा सीन आ जाएगा जो पसंद नहीं आएगा तो उंगली किस पर रख देंगे? उस पर रख देंगे। अब अगर परमात्मा डेस्टिनी लिख रहा है तो दो लॉज फॉलो होने चाहिए। एक, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। उसको हम कहते हैं क्षमा का सागर, उसको हम कहते हैं प्यार का सागर। आज आपका बच्चा अगर कोई गलती कर भी दे, आप सिर्फ उसको 5 मिनट डांट सकते हैं, उसके ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। उसके बाद कहेंगे ठीक है अभी अगली बार से नहीं करना। क्या आप उसको ऐसी कोई सजा देंगे जो आज हमें जीवन में मिलती हुई दिखाई दे रही है, जब उसके लिए हम कहते हैं उसने इसको ऐसा किया? हाउ डू वी पुट द फिंगर देयर? जब हम विद ऑल आर क्वालिटीज एंड अ फ्यू वीकनेसेस हम किसी को ऐसी सजा नहीं दे सकते, तो वो कैसे ऐसी सजा देगा? एंड दूसरा, अगर परमात्मा डेस्टिनी लिख रहा है तो सब बच्चों की डेस्टिनी, सब बच्चों की डेस्टिनी एक जैसी होनी चाहिए ना। आप एज अ पेरेंट दो बच्चों के बीच में मतभेद तो नहीं करेंगे? तो एक डेस्टिनी परफेक्ट होनी चाहिए, दूसरा डेस्टिनी इक्वल होनी चाहिए अगर भगवान भाग्य लिख रहा है तो। दूसरा बिलीफ सिस्टम कि जैसा हमारा कर्म वैसा उसका कॉन्सिक्वेंस। अब हमारे कर्म, मेजोरिटी कर्म बहुत अच्छे हैं, कुछ एक कर्म हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, तो डेस्टिनी में भी मेजोरिटी चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ एक चीजें ऊपर नीचे आती हैं। हम सबके कर्म अलग अलग हैं तो डेस्टिनी भी फिर अलग अलग होगी, क्योंकि हम सब इक्वल एंड आइडेंटिकल कर्म तो कर ही नहीं सकते। हर एक का कर्म अलग तो हर एक का भाग्य अलग। तो अब दोनों बिलीफ सिस्टम में से एक को पकड़ना होगा, दूसरे को आज छोड़ना होगा। तो कौन सा पकड़े? जैसा कर्म वैसा फल। अब मन अगर कभी कहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उंगली कहां जानी है? तो अब बाहर नहीं जा सकते। अब उंगली कहां जानी है? यहां। ठीक है ये बात, ये गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज है या वो बेटर ऑप्शन था? क्या बेटर ऑप्शन है? ये बेटर ऑप्शन है। अच्छा, अब इधर अगर उंगली आ गई कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ यहां, फिर दूसरा क्वेश्चन है अब ठीक किसने करना है, तो भी यहां, फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो क्या कर रहा है? परमात्मा और हमारा रिश्ता जस्ट लाइक अ पेरेंट एंड चाइल्ड होता है। आप अपने बच्चे को राय दे सकते हैं, है ना, एडवाइस देते हैं, आप अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार देते हैं, आप अपने बच्चे को हर स्टेप पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन बच्चे का कर्म आप नहीं कर सकते हैं, राइट? और बच्चे की डेस्टिनी में जो आएगा वो भी फेस किसको करना होगा? बच्चे को। जब उसकी डेस्टिनी में कुछ आएगा और उसको फेस करना होगा, उसको फेस करने की एडवाइस भी आप दे सकते हैं, फेस करने के लिए सपोर्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन फेस किसको करना है? बच्चे। सेम गॉड एंड अस, सेम भगवान हमें सही कर्म करने का ज्ञान देता है, अनकंडीशनल प्यार देता है, सही कर्म करने की शक्ति भी देता है, लेकिन कर्म किसको करना है? हमें करना है। अगर हमारे पुराने कोई कर्म का कॉन्सिक्वेंस आता है, वो हमें उसको फेस करने का ज्ञान देता है, प्यार देता है, शक्ति देता है, लेकिन फेस किसको करना है? हमें करना है। तो हमें हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए उसके अंदर। अगर हम उसको कहेंगे कि वो प्रॉब्लम आई है ठीक कर दो, ये आया है ठीक कर दो, हम ये कह सकते हैं इसको ठीक कैसे करना है उसकी मेरे को पहले मुझे ज्ञान दो, फिर मुझे शक्ति लेनी है, और फिर उसको ठीक मैंने करना है। अगर हमने सिर्फ रोज उसके सामने हाथ जोड़कर प्यार से उसको कहा मेरी ये वाली प्रॉब्लम आज ठीक करना, आज वो वाली करना, आज वो वाली, इट्स इज नॉट गोइंग टू हैपन। फिर कोई प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, कोई नहीं ठीक होती हैं, वो डिपेंड करता है कर्मा का कौन सा कॉन्सिक्वेंस सामने आया हुआ था उस दिन। लेकिन कभी कभी जब कोई बहुत बड़ी बात आती है और ठीक नहीं होती है, तो हम में से कुछ लोग उससे ही नाराज हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं ना कि ये कैसा भगवान है, इसको मैंने कितना प्रे किया था। फिर हम काउंटिंग भी शुरू करते हैं, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने व्रत भी रखे, मैं तीर्थ भी गई, मैंने सब कुछ किया, उसने फिर भी मेरा काम नहीं किया। तो जिस समय उसके प्यार और शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कभी कभी हम उससे झगड़ा करके बैठ जाते हैं। जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स से झगड़ा करता है ना, ये ऐसा हुआ क्यों, अब मैं आपसे ही बात नहीं करूंगा, तो हम भी उसको कहते हैं अब मैं आपसे ही बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही क्लियर नहीं था, हमने सोचा जो किया उसने किया, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन बिलीफ सिस्टम हम एक्चुअली परमात्मा से थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है पता नहीं कब क्या हो जाएगा हमारी डेस्टिनी के अंदर, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर फियर डाला भी गया है, डाला जाता है फियर, आप ऐसा करेंगे आपकी कुल देवी कुल देवता नाराज हो जाएंगे, बोला जाता है ना ऐसा, आपने कभी सुनी है लाइन कुल देवी कुल देवता नाराज हो जाएंगे? किस किसने लाइन सुनी है ये कि नाराज हो जाएंगे? आपने ऊपर से नहीं कभी पूछा कि देवी देवता नाराज कैसे हो सकते हैं? पूछना नहीं चाहिए था कि देवी देवता होके भी अगर नाराज हो रहे हैं तो फिर हमारे में और उनमें फर्क क्या है फिर? और फिर हमें उनको कहना चाहिए इतने नाराज तो हम भी नहीं होते जितने वो होते हुए दिखा रहे हो आप। अभी पिछले हफ्ते गणेश चतुर्थी हुई ना, तो क्या हम सुनते आए हैं बचपन से कि शंकर जी आए तपस्या करके 10 साल के बाद, और वो छोटे बच्चे ने कहा अंदर नहीं जाना, तो उनको इतना गुस्सा आ गया उसका ही सर काट दिया। ऐसा तो हम भी नहीं कभी करेंगे किसी को। आज आप देखो 3 मिनट की मेडिटेशन के बाद भी यू फील पीसफुल, देवता 10 साल की तपस्या, और सामने वाले बच्चा 10 साल का, और गलती क्या साइज की कि अंदर नहीं जा सकते आप, और कर्म क्या कर दिया. एंड वी हैव बीन हियरिंग दिस सिंस चाइल्डहुड एंड वी नेवर सेड हाउ एंड वाई. तो देवी देवताओं को हम गुस्सा करते हुए दिखाते हैं, देवी देवताओं को हम श्राप देते हुए दिखाते हैं. देवी देवताएं हैं, देवी देवता मतलब 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, जिसके अंदर थॉट भी नहीं आ सकता गुस्सा करने का. श्राप देना तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है. तो ना परमात्मा से डरना चाहिए, ना देवी देवताओं से डरना चाहिए, उनसे तो प्यार करना चाहिए. क्योंकि प्यार और डर दोनों की एनर्जी बहुत डिफरेंट है. प्यार प्योर एनर्जी, डर नेगेटिव है. इसीलिए जब भी हम पूजा कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, उसमें भी एक एलिमेंट ऑफ डर बैठ गया है. ये नहीं किया तो, ऐसे नहीं किया तो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, व्रत डॉक्टर ने कहा मत रखो, नहीं मुझे तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं रखा तो क्या हो जाएगा. दिस एलिमेंट ऑफ फियर, हम जो कर रहे हैं ना उसकी ताकत हमें मिलने नहीं देता, क्योंकि हम ऑलरेडी डर से कर रहे हैं. भावना से करना था, प्यार से करना था, श्रद्धा से करना था, तो आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती. डर से करेंगे तो, मजबूरी से करेंगे तो, सिर्फ नियम बना हुआ है इसलिए करेंगे तो चार्जिंग नहीं होगी, सिर्फ विधि पूरी हो जाएगी. तो वी ऑलवेज नीड टू थिंक कि विधि होनी चाहिए, लेकिन विधि की एक्यूरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भावना की एक्यूरेसी. रिजल्ट भावना का मिलने वाला है. आपका बच्चा आपके लिए प्यार से नाश्ता बनाता है, कल विधि सारी गड़बड़ है, किचन सारा ऊपर नीचे हो गया और खाना भी थोड़ा उच्च ऊपर नीचे ही बना हुआ है, तो विधि बिल्कुल, लेकिन भावना, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है तो मैं उसके लिए बनाऊंगा, तो आप उसको श्राप देंगे उसके बाद, आप उसको डांटेंगे उसके बाद कि मेरा किचन कितना गंदा कर दिया तुमने, और केक बनाया तो बनाया, जला हुआ ये तो आधा कौन खाएगा इसको. जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनके लिए ऐसा क्यों बिलीव करते हैं सब कुछ. और ये बिलीव करने की वजह से हम परमात्मा के नजदीक होने की जगह थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं कि पता नहीं कब गुस्सा कर दे और मेरी डेस्टिनी में क्या लिख देगा. इट्स ओनली वन बिलीफ सिस्टम. एंड वी से टू ईच अदर ऑल्सो, आई एम अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन. परमात्मा कहता है गॉड लविंग, गॉड फियरिंग नहीं. आज यहां से जब जाएंगे एक चीज छोड़ के जाना, हम भगवान से डरते नहीं है. एक ही है जिससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही है जो हम कुछ भी कर लें वो गुस्सा तो कर ही नहीं सकता. क्यों नहीं गुस्सा कर सकता वो क्यों नहीं गुस्सा कर सकता? ओशन ऑफ लव गुस्सा कैसे करेगा? वो एक ही है जिसका प्यार और एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल है. तो डरना हमें परमात्मा से नहीं है, लेकिन हमें डरना किससे है? डर भी नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, किससे है? अपने कर्मों से. तो ध्यान उस समय रखना है कि जब हम कोई कर्म कर रहे हैं, इमीडिएटली ये अटेंशन, इसका एक कॉन्सिक्वेंस आता है. और कॉन्सिक्वेंस को ध्यान रख के कर्म करेंगे तो हर कर्म हमारा स्ट्रेट होगा सारा दिन में. एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, कुछ ठीक करना होगा तो किसके पास जाएंगे? आप में से कोई जाता है अपना भाग्य पूछने के लिए कि मेरे भाग्य में क्या होने वाला है? ऐसे सीक्रेट होता है ये सब. अभी अगर बाहर कोई बोले ना मुझे हाथ देखना आता है, लाइन लग जाएगी, हॉल खाली हो जाएगा. यहां हम भाग्य बनाने की बात कर रहे हैं, वहां वो भाग्य बता रहे हैं क्या रेट है. कौन सा वाला ऑप्शन बेटर है कि भाग्य में क्या हो रहा है वो जानना है, या भाग्य कैसे बनाना है वो जानना है? भाग्य में क्या होने वाला है ये जानकर क्या करेंगे? ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो एक साइंस है. इट्स साइंस, लेकिन साइंस ऑफ अ प्रिडिक्शन. prediction based on our present. जैसे आप जो करते हैं वो भी साइंस है. आज मैं आपके पास आऊं, आप मेरा ब्लड टेस्ट करवाएं, मेरी फैमिली हिस्ट्री पूछें, मेरी लाइफस्टाइल पूछें. दिस इज ऑल माय प्रेजेंट. और सब देखकर आप मुझे एक कागज पर लिख कर देंगे कि आपकी आज के ब्लड टेस्ट, आज की आपकी लाइफस्टाइल और आपकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए आने वाले 6 महीने के अंदर आपको ये बीमारी होने की संभावना है. लेट्स से आपको डायबिटीज होने की संभावना है. व्हाट यू आर राइटिंग इज एब्सोल्युटली ट्रू बट इट इज बेस्ड ऑन टुडेज ब्लड टेस्ट. इट इज बेस्ड ऑन माय टुडेज लाइफस्टाइल एंड द प्रेडिक्शन इज फॉर द कमिंग 6 months. अब मैं ये इंफॉर्मेशन लूंगी, घर जाऊंगी, मेरे पास 2 ऑप्शन है. एक मैंने कहना है ओ डॉक्टर साहब ने कहा मुझे शुगर होने वाला है, अब क्या होगा, क्या करूं, टाइम तो मिलता नहीं है, ये वो 6 महीने से पहले ही हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेस और क्रिएट हो जाएगा ना आपकी प्रेडिक्शन सुनने के बाद, तो वो जल्दी हो जाएगा. तो मैं कहूंगी डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं, उन्होंने पहले बता दिया था कि मुझे डायबिटीज होने वाला है. एक वे ऑफ लिविंग है लाइफ. एंड दूसरा वे ऑफ लिविंग है, उन्होंने कहा है अगर ऐसे ही चला तो 6 महीने में हो जाएगा. तो हम आज सब कुछ चेंज कर देते हैं, आज से खाने का तरीका, सोने का, उठने का, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, सब कुछ. कब होगा फिर? कब होगा फिर? फिर आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी? आपकी प्रेडिक्शन राइट थी? आपकी प्रेडिक्शन राइट थी? आपकी प्रेडिक्शन राइट थी? बिल्कुल राइट थी. वो भी साइंस है, वो भी साइंस है. प्रेडिक्शन भी बिल्कुल राइट है, लेकिन प्रेडिक्शन आज के संस्कारों पे बेस्ड है. लेकिन आज मैंने अपना संस्कार बदल दिया अगर, तो मेरी रियलिटी बदल जाएगी. प्रेडिक्शन नॉट रियलिटी. प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी, रियलिटी हमारी चॉइस है. आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर, आई सेड ये आप कैसे बनाते हो जन्म पत्री पहले दिन? तो उन्होंने कहा बेस्ड ऑन प्लैनेट्स एंड ऑल. आई सेड एक ही क्षण पर 2 बच्चे पैदा हो गए तो दोनों की जन्म पत्री अलग अलग क्यों है? तो उन्होंने कहा वो जो आत्मा संस्कार लेकर आई उसके ऊपर प्लैनेट का असर. राइट बात है. आई सेड अब जन्म पत्री बनी आज, 40 साल बीत गए, हम अभी भी उसी जन्म पत्री को चेक कर रहे हैं कि ये क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. व्हाट अबाउट ऑल द कर्मस विच दैट सोल इज डूइंग इन दीज 40 इयर्स? उसका भी तो इफेक्ट दिखना पड़ेगा. हम 50 साल बाद भी कह रहे हैं कि 25 साल पहले पंडित जी ने कहा था 50 की एज में ये होगा, लेकिन उस 25 साल में मैंने जो कर्म किए उसका भी तो अपडेट होना चाहिए ना उसके अंदर. कुछ मैंने अच्छे किए होंगे, कुछ मैंने गलत किए होंगे, कुछ भी किया हो लेकिन अपडेट तो आना चाहिए उसके अंदर. उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही. उन्होंने कहा देखो, एक तो हमारे पास कोई संस्कारों की बात करने आता नहीं है. He said हमारे पास क्या पूछने आते हैं? जो भी हम लोग पूछने जाते हैं वो पूछने आते हैं. He said मेजोरिटी लोग जो संस्कार लेकर आए ना उसको वो चेंज नहीं करते हैं. तो जब वो संस्कार चेंज नहीं करते तो वो जो जन्म पत्री है वो बिल्कुल राइट निकलेगी. क्योंकि जन्म पत्री किस बेसिस पे बनी? माय संस्कार ऑन दैट फर्स्ट डे एंड इफेक्ट ऑफ प्लैनेट ऑन माय संस्कार विच आई गॉट ऑन द फर्स्ट डे. सो इफ आई डोंट चेंज माय संस्कार then what they are going to say will always be right. And then I asked him, and what if we change our sanskar? It is his words, I am quoting him. He said, then this document is not valid for that person. Because sanskar hi badal gaya. To sanskar badal gaya, to prabhav badal jayega, bhagya badal jayega. Isiliye, आप सब ने अगर किसी ने चेक करवाया तो आप अनुभव करेंगे कुछ चीजें राइट निकलती हैं और कुछ चीजें नहीं निकलती हैं, क्योंकि हमारा कोई ना कोई संस्कार तो चेंज हो ही जाता है, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, लेकिन संस्कार तो बदलते हैं। इसलिए 100% एक्यूरेसी एवरी टाइम नहीं आती है। तो हमारे पास दो वेज ऑफ लिविंग है, एक डिपेंडेंसी एंड दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट आई हैव द पावर टू चेंज एनी संस्कार, एंड इफ आई हैव चेंज द संस्कार आई हैव द पावर टू चेंज माई डेस्टिनी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज रिटन। वो जो जन्म पत्री है वो पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से बनती है। इट्स लाइक 31st मार्च 1st अप्रैल हमारा बिजनेस चल रहा है, 31st मार्च को ये है टोटल, तो 1st अप्रैल को भी वही होगा बैलेंस शीट में। अब जैसा बिजनेस मैंने पिछले साल किया था, जिस तरह से किया था, 31st मार्च को वो दिखा रहा है टोटल इतना प्रॉफिट है या इतना लॉस है, जो भी है। अगर मैं सेम तरह से बिजनेस करूं तो मेरा नेक्स्ट ईयर भी वही आता जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस करने का तरीका बदल दिया तो फिर अगर लॉस लेके आए थे तो भी प्रॉफिट पे जा सकते हैं, और कभी कभी तो प्रॉफिट लेकर आए थे, कभी कभी तो प्रॉफिट लेकर आए थे लेकिन कुछ 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 गड़बड़ इस साल में कर दी तो लॉस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर चले भी गए तो आज चेंज करते हैं फिर तरीका, फिर प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे। एवरी मोमेंट द पावर इज ओनली विद वन पर्सन विथ मी एंड वी नीड टू स्टार्ट यूजिंग दैट पावर। एवरी थॉट आई क्रिएट, एवरी वर्ड आई स्पीक, एवरी बिहेवियर इज अ कर्म। सबसे इंपॉर्टेंट वो कि कर्म सिर्फ वो नहीं जो हम बोलते हैं और करते हैं, कर्म वो जो हम सोचते हैं। Why कर्म वो जो हम सोचते हैं? क्योंकि कर्म ओनली मीन्स एनर्जी विच आई क्रिएट एंड आई सेंड आउट। कर्म मैंने भेजा बाहर, एंड डेस्टिनी क्या है? जो बाहर से मेरी तरफ आता है। तो दो एनर्जी सारा दिन चल रही है, एक एनर्जी मेरे से बाहर जा रही है और एक एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है। एक वो जो मैं आपसे व्यवहार करूं, एक वो जो आप मेरे से व्यवहार करें। जो मैं आपसे व्यवहार करूं मेरा कर्म, जो आप मेरे से व्यवहार करें वो मेरा भाग्य। तो दो एनर्जी सारा दिन चल रही है। तो अपने कर्म की चेकिंग करने के लिए अपनी थॉट्स को चेक करना है। इसलिए हमने कल देखा अंदर कुछ और बाहर कुछ और करेंगे तो खुद अपने आप से ही धोखा खा लेंगे, सोचेंगे कि हम सारी ट्रांजैक्शंस राइट कर रहे थे और एंड में बैलेंस शीट टैली नहीं करती। मैं इनसे मिली, मैंने इनसे इतने प्यार से बात की, मैंने इनको खाना भी खिलाया, मैंने तो जाते जाते गिफ्ट भी दिया, फिर भी रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ये नहीं चेक किया मैं अंदर से इनके लिए कैसा सोचती हूं। मैंने इनके लिए इतना किया फिर भी ये मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ये नहीं चेक किया कि मैं अंदर से इनके साथ कैसा सोचती हूं। मैंने सिर्फ ये चेक किया मैं इनके लिए क्या करती हूं। तो कर्म इज नॉट टू बी चेक्ड इन वर्ड्स एंड एक्शंस, कर्म एट द लेवल ऑफ थॉट। अब ये इक्वेशन को सेट करते हैं और अपने जीवन में इसको फिट करते हैं। एवरीथिंग आई थिंक स्पीक बिहेव, एनर्जी गोइंग आउट कर्म। Everything coming to me, situations, health, career related, rishte, people's behavior to me, which means any energy which is coming to me like this, this is my destiny. Now, most important thing, anything that is coming to me like this, wo kyun aa rahi hai meri taraf is tarah? तो कुछ भी इस तरफ आ नहीं सकता जब तक इस तरफ गया नहीं है, राइट? वो हम फ्रिस्बी फेंकते फिर वो जाएगी घूमेगी और वापस आएगी। हम बूमरैंग फेंकते जाएगा घूमेगा वापस आएगा, लेकिन जब वो जाएगा और वापस आएगा उसके बीच में 2 मिनट बीत सकता है? दो घंटे बीत सकते हैं, दो दिन बीत सकते हैं, दो जन्म बीत सकते हैं, क्योंकि उसने तो जाना है और वापस आना है। अब मैंने अगर अभी फेंका और उसने वापस आना है और उसके बीच में मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया और फिर वो फ्रिस्बी वापस आएगी, मैं कहूंगी ये कहां से आ रही मेरी तरफ, ये किधर से आ गया मेरे पास, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वो वापस कहां से आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि उसको फेंकने के बाद मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, मेमोरी चली गई। दो तीन साल की एज तक आत्मा को याद होता है। आत्मा जब गर्भ में होती है उसको अपने पास्ट के सारे कर्म याद होते हैं। इसीलिए when you स्टडी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, सोल्स हु हैव एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, इन अ फ्यू मिनट्स दे कैन सी ऑल देयर कर्मज ऑफ देयर लाइफ टाइम, बिकॉज वेन वी आर डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी नो देन वी कैन सी एवरीथिंग। एंड इसीलिए आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसको अपना सारा कुछ दिखता है, और आत्मा जब गर्भ में है वो अपने नए बॉडी और नए फैमिली से अभी तक अटैच्ड नहीं है, उसको सब कुछ दिखता है। लेकिन एक साल, दो साल, तीन साल, नेचर इज सो ब्यूटिफुल कि जब तक वो प्रेजेंट से अटैच होते हैं उसको पास्ट का भूलता जाता है, और भूलना ही चाहिए। याद आया तो वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, तो याद नहीं करना हमने पास्ट का। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि कुछ कुछ चीजें हम ऐसी फेंक आए थे, उनमें से मेजोरिटी बहुत अच्छी वाली है, बहुत अच्छी वाली है। आज हमारे पास इतना हेल्दी बॉडी है, ऐसे ही नहीं मिलता, ऐसे ही नहीं मिलता है। आज हमारे पास इतनी प्यारी फैमिली है, ऐसे ही नहीं मिलती। आज आप इतने ब्यूटीफुल प्रोफेशन में हैं, ऐसे ही नहीं मिलता। ये सारा आपके बहुत 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 श्रेष्ठ कर्मों का रिटर्न है। लेकिन जो जो चीजें हमें श्रेष्ठ कर्मों के रिटर्न में मिलती हैं, उनके लिए हम ऐसे नहीं कहते ऐसे कैसे मैं डॉक्टर कैसे बन गया, उसके लिए हम कहते मैंने मेहनत की मैं बन गया। लेकिन कुछ छोटी सी चीज दूसरी आती है तो हम कहते हैं ऐसे कैसे मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, उसके लिए हम नहीं कहते मैंने कोई मेहनत की होगी तभी आया है, वी नॉट से लाइक दैट। उसके लिए हम कहते हैं उसने कुछ किया होगा इसलिए ये आया है मेरे साथ। दोनों चीजें मेरे कर्मों की वजह से हैं, एंड मेजोरिटी चीजें ब्यूटिफुल हैं। अब हमें सिर्फ इसका देखना है कि जो एक दो दूसरी चीजें आ रही हैं उसका क्या करना है। एक तो आज से क्या हर कर्म कैसा होगा हमारा। अब मधुबन से वापस जाने के बाद हर कर्म कैसा होगा। अब तो हर थॉट प्योर है क्योंकि अब हम वापस कौन जाने वाला है, कल एंजल्स वापस जाने वाले हैं ना। वो तीन चीजें वर्क हो गई जो डिसाइड हुई थी फर्स्ट डे, वो तीन चीजें तो करनी पड़ेंगी एंजल बनने के लिए। तो एंजल तो कोई गलत थॉट क्रिएट ही नहीं करेगा, कोई गलत काम करेगा ही नहीं। लेकिन एंजल बनने से पहले हम कोई कोई फ्रिज भी फेंक के आए हुए हैं, चाहे वो इस कॉस्ट्यूम में है चाहे वो, और वो वापस आती है। ज्ञान और परमात्मा की शक्ति आत्मा को इतना पावरफुल बनाता है कि जब ये पास्ट का कोई कर्म भी सामने वापस आता है ना, हम उसको बहुत प्यार से क्रॉस कर सकते हैं। आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 100 बुखार होगा लेकिन उनको सफरिंग बहुत ज्यादा होती है, और कोई लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में होगा लेकिन उसके चेहरे से वो इतना खुश लगेगा, वो अपनी लाइफ को इतना एंजॉय कर रहा है, उसको सफरिंग नहीं हो रही है। हैं ऐसे दो तरीके, तो विच मीन्स मैंने कोई ऐसा कर्म किया जिसका कॉन्सिक्वेंस मेरे पास इतनी बड़ी बीमारी आई, लेकिन आज मेरे पास इतनी ताकत है कि मेरे को उस बड़ी बीमारी की भी कोई सफरिंग नहीं हो रही, आई एम हैप्पी, तो कॉन्सिक्वेंस मुझे कुछ फील नहीं होगा। मैंने कुछ ऐसा किया जिसको मुझे 100 बुखार हो गया सिर्फ, लेकिन आज मेरे पास 100 बुखार फेस करने की ताकत ही नहीं है, तो मैंने 100 बुखार के लिए भी क्या कहना शुरू किया, हाय ऐसा कैसे हो गया, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कर्मा, उसका जो इफेक्ट है, that does not depend on my past karma, but that depends on my today's present strength. तो past karma कितना भी बड़ा हो, लेकिन ज्यादा power किसके पास है? आज के हमारे present. So focus always has to be on my present karma. अब हम बहुत सारी energies बाहर फेंक कर आते हैं, इसको दिया, इसके बारे में सोचा, इससे कुछ किया, इससे कुछ बात किया, they will all come on the return. Now important is to focus that when they are coming on the return, now what do I have to do? Suppose मैं यहां से गुजर रही थी, इनको बस ऐसे क्रॉस किया, थोड़ा सा टच हुआ और ये मेरे को जोर जोर से डांटने लग गए. मैंने कहा मैं किया क्या आपको? वो जोर जोर से डांटने लग गए. Now ये जो मुझे जोर जोर से डांट रही है, what is this? Anything which is coming like this, equation hamesha set karte hain fatafat. Anything which is coming like this, this is a return of. अब हम क्या करते हैं, हम अभी का देखते हैं कि मैंने आपको एक लाइन बोली, उसके रिटर्न में आप मुझे इतना कुछ सुना रहे हो, लेकिन वो जो सुना रहे हैं वो रिटर्न ऑफ वो एक लाइन नहीं है, वो रिटर्न ऑफ कुछ चीजें हैं जो मुझे याद ही नहीं मैंने कब भेजी थी उधर. एंड यू कैन एक्सपीरियंस दिस इवन विद एन एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर ऑन द रोड. होता या नहीं होता? दो गाड़ियां ऐसे आई, थोड़ा सा टच हुआ, टक्कर हुई, एक ने निकला, जोर 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 से उसको डांट दिया, 5,000 रुपए भी ले लिए, चला गया सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग. ये कौन थे? ये वो थे जिनसे हमने पिछली बार 5,000 रुपए ले लिए थे, वापस नहीं दिए और कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, तो इस बार डांट भी पड़ी और 5,000 रुपए भी देने पड़े. It happens only like that. Nobody can just walk into your life and do anything and go away. It's all happening very scientifically. जैसे साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटी इज वर्किंग एवरी टाइम, आप कितना भी ट्राई करें, आप लॉ ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं कूदेंगे तो गिर जाएंगे. फिर लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग एवरी टाइम. अब इन्होंने मुझे डांट दिया जोर से, अब मैं क्या करूं? Now what to do is important. वो तो डांट रही है, अब क्या करूं? डांट रही है, कोई धोखा दे रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई बिट्रे कर रहा है, कुछ 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 हो रहा है आजकल, अब क्या करूं? रिटर्न. वन. ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? Return of something that I have sent before. Is she right? थोड़े से जोर से उन सब लोगों को अपने सामने लाते हुए. She तो right लगेगी, वो तो मुझे डांट रही है इसलिए आपको right लग रही है. अब उन सब लोगों को सामने लेकर आओ जो आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको नीचे गिरा रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, कोई आपके अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है पेशेंट जाके, ये सारे लोग जो आ रहे हैं वो राइट है? हमारे घर में एक गीता सार लगा हुआ होता है, उस पर क्या लिखा होता है? जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है. और सारा दिन हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ. जो हुआ अच्छा, उसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली द वर्ड इज जो हुआ सही, जो हो रहा है वो भी बिल्कुल सही, और जो होने वाला है वो भी बिल्कुल सही. सही मीन्स एक्यूरेट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा. कोई सीन ऐसी आएगी जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो सही है. अच्छा बोलेंगे तो विल क्वेश्चन अलॉट, सही बोलेंगे तो मन क्वेश्चन नहीं करता, मन इस पे फोकस करता है कि अब मैंने क्या करना है इसका. अब अगर ध्यान नहीं रखा तो जैसे ये मुझसे गलत करती है तो मैं या तो हर्ट हो जाती हूं, रोने लगती हूं, उनके बारे में बुरा बोलती हूं, या मैं उनके साथ ही गलत व्यवहार कर देती हूं. एनर्जी व्हेन इट कम्स टू मी, आई हैव 3 ऑप्शंस. 1, I absorb the energy. If I absorb the energy means मैं ऊपर से कुछ नहीं बोलती लेकिन अंदर से I have absorbed her negative energy. Second option, energy comes to me, I reflect the energy. Which means आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे मैं भी same. Reflect. So I can either absorb energy, I can reflect energy. Third, I can transform energy. Transform energy. Which means अब ये मुझे गुस्सा कर रहे हैं अब मुझे क्या करना है वापस ये मुझे जोर जोर से गुस्सा कर रही है मुझे वापस क्या करना है पहला ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है पास्ट करवा सेकंड नाउ व्हाट आई विल डू विल बी माय प्रेजेंट कर्मा एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट विल डिसाइड माय टुमॉरोज फ्यूचर डेस्टिनी फिनिश्ड इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को देखने वाले तीनों कालों को देखने वाले तीन काल कौन से हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एवरी मोमेंट आप यहां आए आबू दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पास्ट कर्मा कुछ लोग हैं जिनकी लास्ट डे पे टिकट कैंसिल हुई है और कुछ लोग हैं जिनकी लास्ट डे पे टिकट बुक हुई है होता है ऐसे या नहीं होता तो आपका यहां आना कॉन्सिक्वेंस ऑफ पास्ट कर्मा आज से आपने क्या करना प्रेजेंट कर्मा और जो प्रेजेंट कर्मा वो फ्यूचर डेस्टिनी तो एवरी मोमेंट जो सामने से आ रहा है रिटर्न ऑफ पास्ट कर्मा जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट कर्मा और जो हम कर रहे हैं वो टुमारो वापस आएगा फ्यूचर डेस्टिनी इसलिए कहते हैं ना एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड बाय एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड बाय माय लास्ट टाइम्स कर्मा तो येस्टरडे मैंने जो किया वो टुडे आएगा और टुडे जो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी वो टुमारो आएगा तो येस्टरडे कोई वापस रिटर्न कर दिया तो क्या हो जाएगा उसने मुझे डांटा मतलब येस्टरडे मैंने कुछ गड़बड़ की थी और अगर आज भी मैंने वैसा ही कर दिया तो मेरा टुडे भी खराब और टुमारो हम फिर मिलेंगे फिर अब कलयुग में जाएंगे तो कलयुग में कहेंगे ईट का जवाब एंजल्स तो ऐसा नहीं करेंगे ईंट मेरी तरफ आई क्यों ईंट मेरी तरफ आई क्यों क्योंकि मैं पिछली बार फेंक कर आई थी अब आज पत्थर फेंकूंगे आज पत्थर फेंकेंगे तो फिर आज भी चोट लगेगी और वापस भी आएगी अब ईंट का जवाब किससे देंगे अब ईंट का जवाब किससे देंगे ये सारे आंसर्स उन लोगों को पहले माइंड में सामने लेकर आओ और फिर आंसर देना क्योंकि जो आज डिसाइड करना है वो कल जाके इम्प्लीमेंट करना है और थॉट्स में तो आज से ही शुरू करना है ईंट का जवाब पत्थर से दिया कलयुग घोर कलयुग बन गया अब अगर सतयुग बनाना है अपना वर्तमान और भविष्य सुंदर बनाना है तो सामने से कोई कुछ भी कर रहा हो वो तो हमें सिर्फ रिटर्न कर रहा है हमारी एनर्जी लेकिन आज हमारे पास पावर है नॉलेज है कि वो सामने से कुछ भी कर रहा हो वी आर कमिंग बैक टू द फर्स्ट डे सिचुएशन एंड स्टेट ऑफ माइंड इज इंडिपेंडेंट सिचुएशन मेरे पास्ट कर्म का कॉन्सिक्वेंस है एंड स्टेट ऑफ माइंड मेरा प्रेजेंट कर्म है जब इसको इंडिपेंडेंट कर देंगे तो प्रेजेंट कर्म हर सिचुएशन में सही करेंगे तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेस्टिनी सर्टन किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है पूछने के लिए मेरे भविष्य में क्या लिखा है जब हम कर्म ही सही कर रहे हैं जब कर्म ही सही है तो क्यों पूछेंगे किसी को जाकर के मेरे भविष्य में क्या है और अगर पुरानी वाली बात कोई आनी भी है वापस तो हमारे पास उसको फेस करने की ताकत है कोई अगर हमारे साथ गलत करे बहुत ज्यादा गलत करे क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? अभी तो आप 2 मिनट पहले इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे थे, फूल भेजेंगे, फ्लावर्स भेजेंगे, बुके भेजेंगे, ब्लेसिंग नहीं भेजेंगे। ब्लेसिंग मीन्स क्या? कोई मेरे लिए गलत कर रहा है, मैं अंदर से उससे नफरत नहीं करूंगी, मैं अंदर से उसके लिए बुरा नहीं सोचूंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। और अब मुझे इस कार्मिक अकाउंट को क्या करना है? ठीक कर। क्लोज नहीं होता, क्लोज नहीं होता। क्लोज करना मतलब मैं आपके लिए एक भी थॉट नहीं क्रिएट करूंगी, आप मेरे लिए एक भी थॉट नहीं क्रिएट करेंगे। ये तो होने नहीं वाला है। चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है कि आज से हम जो आपके लिए सोचेंगे वो सिर्फ ब्लेसिंग्स और गुड विशेस है। एंड वो करते ही हम अपने कार्मिक अकाउंट की क्वालिटी को क्या कर देंगे? चेंज। दोनों में से सिर्फ एक को करना है। ये भी बचपन से सुना है, जो करेगा सो पाएगा। एक को करना है। वन इज नीडेड टू चेंज द कार्मिक अकाउंट। लेकिन अगर मैंने नेगेटिव भेजा, फिर आपने भी नेगेटिव भेजा, फिर मैंने भी भेजा, फिर आपने भी भेजा, तो इट्स गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। एंड ये भेजते भेजते अगर दोनों में से किसी एक ने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया और फिर हम मिलेंगे, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अब तो हमें याद ही नहीं है कि आप कौन हो, मैं कौन हूं, ऐसे भेजते रहते हैं हम एक दूसरे को। कुछ लोगों से हम मिलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता इनसे मिलकर हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, होता है ऐसा कि नहीं? और कुछ लोगों से पता ही नहीं चलता कि अच्छा क्यों लग रहा है इतना। कुछ लोग हमारी एक्चुअल फैमिली है, ब्रदर सिस्टर, लेकिन इतनी बॉन्डिंग नहीं है। कुछ लोग कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हम कहेंगे दे आर मोर देन फैमिली। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी हम दोनों बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज करके आए हैं। सो रिलेशनशिप इज नॉट ऑन द लेबल, रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ एनर्जी वी एक्सचेंज विद ईच अदर। तो ब्लेसिंग्स भेजने के लिए रेडी? अभी भी नहीं? अभी दिवाली आएगी अगले महीने, आप बैठकर सबके लिए एक लिस्ट बनाएंगे कि हर एक को क्या देना है। क्राइटेरिया नॉर्मली किसी को गिफ्ट देने का क्या होता है? उसने क्या दिया था पिछले साल? नेचुरली अब कोई 1000 का देगा तो हम भी उसको 1000-1200 की देंगे, तो 10,000 का थोड़ी दे पाएंगे। हम कहेंगे जितना जितना लेन देन है उतना ही करना है ना। फिर तो हम वो लिस्ट रखते हैं। कुछ लोगों के पास बाकायदा नोटबुक में लिस्ट होती है पूरी, पिछली बार लोगों ने क्या दिया था, क्योंकि अगले साल रेफर करना पड़ेगा उसको बाय करने के लिए। नाउ दिस इज वन वे ऑफ लिविंग। अगर आज हमें ये पता चले कि आज जो हम उनको गिफ्ट देंगे दिवाली के पहले दिन, चौथे दिन तक वही गिफ्ट हमारे पास आने वाला है, और कई बार आता भी है घूम घूम के 4-5 लोगों से मिल मिल के ऐसे वापस। अगर हमें ये पता हो कि मैंने आपको आज जो दिया वो चौथे दिन मेरे पास वापस आने वाला है, व्हाट विल आई बाय फॉर यू? आई विल बाय फॉर यू व्हाट आई वांट, बिकॉज आई एम 100% सर्टन फोर्थ डे दिस इज कमिंग बैक टू मी। आई विल नॉट से उन्होंने 1000 रुपए का भेजा, मैं बोलूंगी मेरे को क्या फर्क पड़ता है उन्होंने कितने का भेजा। मेरे को अगर 50,000 की चीज भी पसंद आ जाएगी मैं खरीद लूंगी, क्योंकि वापस तो मेरे घर आने वाली है। लॉ ऑफ कर्म है ये, जो एनर्जी हम किसी को देंगे वो हमारे पास ही आने वाला है। जो अपने जीवन में चाहिए वो देते जाएं। खुशी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, प्यार चाहिए, देते जाओ। देने समय भी मिल रहा है, वापस आते समय भी मिल रहा है। लेकिन अगर ये कहेंगे उन्होंने तो 500 रुपए की दी थी सिर्फ, और मैंने भी उतने की देनी है, फिर उन्होंने और कम करनी है, फिर मैंने और कम करनी है, डेस्टिनी हमारी चॉइस है। ब्लेसिंग्स दें उनको जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। अभी भी हाँ नहीं बोल रहे हैं। गिफ्ट चौथे दिन वापस आना है, उसके बाद भी हाँ नहीं बोलेंगे। What is a blessing? A blessing is only a thought. किसी ने question में लिखकर भेजा कि किसी ने हमारे साथ गलत किया है, तो हमें उसके साथ legal case करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि उसको ऐसे ही छोड़ दें? क्या answer होगा? क्या answer होगा? हाँ जी, जो सही है वो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक है लीगल केस करना और एक है अंदर से नफरत करना। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। कईयों के साथ हम बाहर कोई एक्शन नहीं लेते और अंदर नफरत ही करते रहते हैं। कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। जो लीगली राइट है वो करेंगे, लेकिन अंदर से दुआएं देंगे कि अब इस आत्मा के साथ मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है, पहले ही बहुत गड़बड़ हो गई है, इसके बाद कोई गड़बड़ नहीं चाहिए अभी इनके साथ। जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, उलझन है, उनके साथ जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक करना चाहिए, ताकि उनके साथ फिर कोई ऐसी भारी एनर्जी एक्सचेंज हमारे कार्मिक पैटर्न में नहीं आए। दुआएं भेजें, दुआएं भेजें रोज, एवरी डे इन मेडिटेशन उनको सामने लेकर आए और हर रोज एक मैसेज दें, वो हमारा पास्ट था, वो हमारे पास्ट का कॉन्सिक्वेंस था। इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स ओवर। फ्रॉम टुडे वी बिगिन अ न्यू अकाउंट। आज से आपके और मेरे बीच सिर्फ प्यार और सम्मान और दुआएं हैं। ये रोज उनको सिर्फ मन से मैसेज भेजें। ये मैसेज भेजते ही पहले अपनी एनर्जी ठीक हो जाएगी कि हमारी तरफ से जो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ जा रही थी वो ठीक हो जाएगी, और वहां पे मैसेज जाएगा तो उनके ऊपर उसका असर होने ही वाला है, वहां से भी एनर्जी वापस आएगी। वहां से नहीं भी आई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कर्म हमारा भाग्य लिखता है, उनका कर्म हमारा भाग्य नहीं लिखता है। One thing we have to be very clear, my karma writes my destiny. If I hate you, the harm will not be caused to you, the harm will be caused to me, because my hatred writes my destiny. हमें लगता है हम किसी के लिए गलत सोचेंगे और उनका गलत हो जाएगा, या दूसरा डर आजकल, कोई मेरे लिए गलत सोच रहा है इसलिए मेरे साथ गलत होता जा रहा है, नजर लग गई किसी की। नजर लगना मतलब क्या? नजर लगना मतलब क्या? मतलब किसी ने सोचा मेरा हॉस्पिटल बंद हो जाए इसलिए मेरा गड़बड़ होने लग गया। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? बहन, मैं यहां से बैठकर अभी एक थॉट क्रिएट करती हूँ। आप सीधा बैठो आराम से अभी। हाँ, मैं अभी एक ये थॉट क्रिएट करूंगी, गिर जाए अभी ये सोफे से। क्यों? मैं कर सकती हूँ। मेरे को अगर जेलेसी उनसे, उनकी वजह से मेरे क्लिनिक में कोई आ ही नहीं रहा है, सब उधर ही जा रहे हैं, सोफे से गिर जाए। सिर्फ गिरने का सोचा, गिरेगी 6 महीने बेड पे लेटेगी, सारे मेरे पास आ जाएंगे उतनी देर में। या मेरे सोचने से वो गिर सकते हैं कभी? कैन शी फॉल? लेट मी थिंक 24/7, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ, विल शी फॉल? नो। अगर हम सारे मिलकर भी ये थॉट क्रिएट करें वो गिर जाए, विल शी फॉल? विल शी फॉल? नो। लेकिन जिस दिन वो थॉट क्रिएट करती है, ये मेरे लिए सोच रही है कि मैं गिर जाऊं, कहीं मैं गिर गई तो उस दिन ये गिरेगी। लेकिन उस दिन जब ये गिरेंगे, ये नहीं कहेगी मैंने थॉट क्रिएट किया, कि उसने सोचा ना इसलिए मैं गिर गई। वी ऑलवेज पुट द ब्लेम ऑन समबडी एल्स एंड वी रिमूव आर फैक्टर फ्रॉम बिटवीन। सब लोग हमारे लिए गलत सोच ले, उनकी सोच हमारा भाग्य नहीं लिखती है, उनकी सोच की एनर्जी सिर्फ हमारी सोच तक पहुंच सकती है। अगर हमारी सोच नेगेटिव हो गई डर से, इनसिक्योरिटी से, फिर हमारी सोच हमारा भाग्य लिखती है। उनकी सोच भाग्य नहीं लिखती, लेकिन उनकी एनर्जी हमारी थॉट प्रोसेस पे इन्फ्लुएंस कर सकती है। लेकिन अगर हम रोज अपने आप को चार्ज करते हैं बैटरी को, हम रोज परमात्मा से कनेक्शन रखते हैं, तो कोई हमारे कितना भी नेगेटिव सोचे, हमारी थॉट्स कैसे होंगी? हमारी थॉट्स कैसे होंगे? प्योर, हमारे भाग्य सिक्योर। आजकल हमारे अंदर इतना फियर हो गया है कि हम अपने जीवन में होने वाली अच्छी बातें भी किसी को नहीं बताते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस हैपेंड विद मी लास्ट वीक। आई वेंट टू हॉस्पिटल, देयर वर टू डॉक्टर्स एंड वन वेरी स्वीटली सेड टू मी, मिस सिस्टर, आपको पता है इन्होंने लास्ट मंथ में इनका रिजल्ट आया, इन्होंने 102 सर्जरीज की। आई सेड डॉक्टर साहब मुबारक। कहते क्या मुबारक, इसने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, चार दिन मेरे पास एक भी सर्जरी नहीं आई। लुक एट द एलिमेंट ऑफ फियर एंड लुक एट द वे ऑफ कनेक्टिंग द टू थिंग्स। इतने डर में हम रहते हैं, इतने वहम में हम रहते हैं। जब हम इतने वहम में रहेंगे तो हम औरों के प्रति कैसा सोच रहे हैं कि किसी ने मुबारक भी दी तो हमें लगता नहीं इसको अंदर से मेरे से कोई प्रॉब्लम है, अब इसकी वजह से चार दिन मेरे पास आया नहीं कुछ काम। ये हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखता है, ये हमारी एक एक सोच की चेकिंग है कि मेरी सोच की क्वालिटी कितनी नीचे होती। इफ वी आर डूइंग वेरी वेल, इवन इफ अदर पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद इट, नथिंग कैन इन्फ्लुएंस यू, nothing can influence you. It only starts influencing when we start having a problem that they have a problem. अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है उसके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए? जेलस है कोई उसके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए? फिर वो ईर्ष्या में कभी कभी आपके खिलाफ कुछ बोल भी देगा, हो सकता है, तो उसके प्रति कैसी फीलिंग होनी चाहिए? जो ईर्ष्या करता है, जो इनसिक्योर है अंदर, वो 24/7 दर्द में है। इमोशनल बीमारियों की सफरिंग फिजिकल बीमारियों से कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि उसके लिए कोई दवा भी नहीं है कि खा के बंद हो जाए दर्द। कुछ अलग अलग चीजें ले लेते हैं हम शाम को, वो अलग बात है, लेकिन उससे दर्द ठीक नहीं होता, उससे आत्मा सिर्फ कमजोर होती है। डिपेंडेंसी जितनी बढ़ेगी, डिस्ट्रैक्ट जितना करेंगे पेन को बाय यूजिंग अदर मेथड्स, उतना वुंड सिर्फ और ही गहरा होता जाएगा। तो नेवर क्रिएट फियर दैट समबडी एल्स डजंट थिंक नाइसली अबाउट मी, एंड हैव लॉट ऑफ कंपैशन फॉर दोज हु आर जेलस और इनसिक्योर। इनसिक्योरिटी सीम्स टू बी अ वेरी फास्टली स्प्रेडिंग इलनेस। Even somebody who is doing extremely well, and are right there, they are insecure of somebody very young who has joined the organization. There are people who are in the selection team, they will not select somebody who is very good. क्योंकि कहीं कल ये मेरे लिए एक threat न बन जाए, ये हमारी सोच होती जा रही है। इतनी सूक्ष्म checking करनी है अपनी सोच की। दूसरों को आगे बढ़ाओ, जो आता है दूसरे को सिखा दो, जो आता है दूसरे को सिखा दो, सब कुछ उसको सिखा दो, उसको अपने से भी अच्छा बना दो। क्या मिलेगा रिटर्न में? क्या मिलेगा रिटर्न में? एक है मैं, मेरे को जो आता है। किसी को सिर्फ इतना पूछो, बहन बहुत टेस्टी सब्जी बनाई थी, कैसे बनाई? तो कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे डाला, हो गए खत्म। बताएंगे नहीं रेसिपी अपनी, रेसिपी भी नहीं बताएंगे अपनी, क्योंकि मेरे को सारी अप्रिसिएशन तो उस रेसिपी के लिए मिल रही है, और मैंने आपको बता दिया और आपने कुछ एक चीज और ऐड करके मेरे से अच्छी बना दी, तो फिर मेरा क्या होगा सारा दिस? हां जी, कोई अपना नहीं बनाता। जितना अगर अपना नहीं बताएंगे, लॉ है, चेक करके देखते हैं, मुझे इतना आता है, मैं किसी को नहीं बता रही, तो मेरा इतना ही रहेगा ये। और किसी को नहीं बताने के कारण से लोग जो मेरे लिए सोचेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं करूंगी, उनके साथ शेयर नहीं करूंगी, उनको टीच नहीं करूंगी, तो वो तो मेरी आत्मा की पावर थोड़ी सी और ही घटती जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन, जितना आता है वो सबको बताओ, सबको बताओ, सबको शेयर करो, सबको इतना सिखाओ कि लोग कहेंगे मैम ये तो अब आपसे भी ज्यादा अच्छी सर्जरी करती है, तो फिर इसको क्या हो जाएगा? जो इतना था वो क्या हो जाएगा? कैपेसिटी को बढ़ाने का सिंपल तरीका दुआएं कमाओ, दुआएं कमाओ, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दुआएं नहीं कमाएंगे, कैपेसिटी उतनी रह जाएगी, और अगर आत्मा कमजोर हो गई तो कैपेसिटी भी धीरे धीरे घट जाएगी। लेकिन कलयुग में नहीं बोलेगा ऐसा कुछ भी, कलयुग में यू नो ना, यू कीप इट टू योरसेल्फ, टुमारो अदरवाइज ऑल पेशेंट्स विल गो टू हिम हु विल कम टू यू। दिस इज फियर, ये बहुत छोटी सी, ये लो फ्रीक्वेंसी की थिंकिंग होती है हमारी, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है। हमारा कर्म, हमारा डेस्टिनी, नोबडी एल्सेस एनर्जी कैन राइट माय डेस्टिनी। अब चित पर कोई है जिसको फॉरगिव करना है, पेंडिंग है? है कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट जिसको फॉरगिव करना है? है किसी के पास? कोई नहीं? बहुत सारे नहीं होंगे भाई साहब, एक दो ही होंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले, तो जिनके लिए हम अभी भी थोड़ा सा सोचते हैं। एवरी थॉट इज गोइंग टू देम एंड एवरी टाइम थॉट इज कमिंग विद मी एंड दिस एनर्जी एक्सचेंज इज गोइंग ऑन, दिस इज डिप्लीटिंग मी। फॉरगिव करें आज उनको। फॉरगिव मतलब भी क्या? फॉरगिव मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड बिटवीन अस। I understand it's a carry forward of something we did when we met last time. And I choose today to change it. So actually forgive kisko kiya? Hum kisi aur ko forgive kar nahi sakte. Agar aapne mere saath galat kiya, mere paas do option hai, nafrat, hurt aur aapke saath bhi galat. और दूसरा ऑप्शन है फिनिश्ड, ओवर, आई फॉरगिव। मेरे आई फॉरगिव बोलने से उनके कर्म का कॉन्सिक्वेंस उनके पास आएगा ये बंद होने वाला नहीं, उनके कर्म का कॉन्सिक्वेंस तो उनके पास आएगा ही, लेकिन आई फॉरगिव मतलब आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड ऑन टू एनी नेगेटिविटी, सो आई एक्चुअली फॉरगिव माई सेल्फ। वी आर नो वन टू फॉरगिव एनीबडी एल्स, no one. Forgiveness has to be for the self, जिससे हमारा मन लाइट रहेगा और हमारा शरीर। जितने लोग आपके पास इलाज कराने आते हैं ना, उनको एक चीज जरूर बताएं, जो पुरानी बातें पकड़ के रखिए छोड़ो, यहां से ब्लॉकेजेस हटने नहीं वाली है जब तक यहां से नहीं हटेंगे। यहां ब्लॉकेज है, पकड़ के रखी है, पुरानी बातें पकड़ के रखी हैं। आप यहां से ब्लॉकेज हटा भी देंगे, थोड़े साल के बाद यहां से रेडिएट करते 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 वो ब्लॉकेज फिर बन जाएगी। इसीलिए मेजोरिटी चीजों में हम कहते हैं एक बार हुआ, हो सकता है 5-6 साल बाद फिर से हो जाए। क्यों? क्योंकि आप जो ब्लॉकेज हटाते हैं वो शरीर से हटाते हैं, लेकिन ब्लॉकेज मैनिफेस्ट जहां से होती है वहां से अगर हटा दें तो फिर वो वापस कभी नहीं आएंगे। इसलिए जो आपको परसों बताया सबने कि आप डॉक्टर नहीं डबल डॉक्टर बनकर जाएंगे, उनका इलाज ऐसा करें जो आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये वापस कभी नहीं आएंगे हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि वो वापस कभी ना आए तो क्या चाहते हैं? ऑफ कोर्स हर एक की शुभ भावना होती है, नहीं है हर एक, एवरी वन इज वर्किंग सो हार्ड, लेकिन फिर टेम्पररी इलाज क्यों, परमानेंट इलाज करके भेजते हैं ना, कि ताकि वो कभी भी वापस ना आए। सिर्फ एक मिनट लगेगा हर पेशेंट को ये एक्सप्लेन करने में कि यहां से सब असर यहां हो रहा है, यहां का इलाज मैं करूंगा, यहां का इलाज आप करो साथ साथ अपना, इसको क्लीन करो, लोगों को क्षमा करो, पुरानी बातों को खत्म करो, गुस्सा करना बंद करो, आपको मेरे पास कभी नहीं आना पड़ेगा वापस। कलयुग में आप एक चीज याद रखिएगा, दो प्रोफेशन है जो बिल्कुल सिक्योर है, और किसी भी बिजनेस में दुनिया में उतार चढ़ाव आ सकता है। एक डॉक्टर और एक ज्यूरिस्ट विल ओनली डू वेरी वेल इन कलयुग, लेकिन सत्ययुग में ये दोनों प्रोफेशन नहीं होने वाले हैं। सत्ययुग में तो डॉक्टर कैसे हो सकता है, और सत्ययुग में वकील भी कैसे हो सकता है? लेकिन कलयुग में ये दोनों प्रोफेशन, इसलिए ये दो प्रोफेशन को तो बिल्कुल इनसिक्योर है. एंड यू कैन सी ना कितना फास्ट रीति से बढ़ते जा रही हैं चीजें, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच टेक्नोलॉजी, इतने इलाज, लेकिन फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही है, जिस एज पे चीजें हो रही हैं वो बढ़ रही हैं. क्यों? क्योंकि यहां कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, यहां जीवन मुश्किल हो रहा है, तो यहां बढ़ता ही जाएगा फिर वो. तो हमारी इंटेंशन क्लीन होगी कि ये ठीक हो और हमारे पास वापस कभी ना आए. वो तब हम कर पाएंगे जब हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को ठीक करना शुरू करेंगे. तो किसी के साथ भी अगर थोड़ा सा उलझा हुआ कुछ है आज से और यहां से जाने से पहले, उसको एक अच्छी थॉट भेजकर एक नई एनर्जी देना शुरू करते हैं, शुरू करते हैं. कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपके जीवन में बार बार एक विघ्न डाल रहा है, उसको रोज मैसेज दें कि इट्स पास्ट, टुडे इट्स डिफरेंट, आई सेंड यू ब्लेसिंग्स, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग दिस टू मी एवरी डे. अगर हम ये नहीं करते तो हम ऑपोजिट कर देते हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा करेगा तो हम फिर से नेगेटिव भेज देते हैं. नेगेटिव का रिटर्न नेगेटिव, कॉम्प्लिकेटेड. एवरी डे 5 minutes in the morning, emerge all those souls from with whom you want to change the energy exchange, and don't wait for them to change it. And give 1 minute also, general, सभी आत्माओं को इमर्ज करो एक थॉट के साथ. इतने जन्मों में मैंने अगर किसी को तंग किया था, मैंने किसी के साथ गलत किया था, वो सब मेरे सामने आ जाए, मैं सबसे क्षमा मांगू, सबसे क्षमा मांगू, क्योंकि पता नहीं कब कौन सामने आके खड़ा हो जाएगा और हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है. आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो इस तरह का है कि अगर आप सही कर्मा करते हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा गुणा ज्यादा है, और अगर आप थोड़ा सा उसमें कुछ और करते हैं तो उसका उल्टा भी बहुत गुणा ज्यादा है. हाई रिस्क प्रोफेशन है मेडिकल प्रोफेशन एज फार एज लॉ ऑफ कर्मा इज कंसर्न्ड, वेरी हाई रिस्क प्रोफेशन है. जैसे कुछ बिजनेस हाई रिस्क बिजनेस होते हैं ना, कि प्रॉफिट होगा तो भी बहुत होगा और लॉस होगा तो भी बहुत होगा. मेडिकल प्रोफेशन ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी तो बहुत मिलेंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा किसी के लिए कुछ भी ऐसा किया, थोड़ा सा किसी के साथ उसके फायदे से पहले अपने फायदे का सोचा या अपने हॉस्पिटल के फायदे का सोचा, तो ब्लेसिंग्स का ऑपोजिट भी बहुत ज्यादा हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि सामने वाला जो आया है वो किस स्थिति में आया है, किस स्थिति में आया है, वो दो एनर्जीज लेकर आया आपके पास. एक एनर्जी है पेन और दूसरी एनर्जी है कंप्लीट ट्रस्ट. वो आकर अपने आप को या अपने फैमिली मेंबर को आपके आगे सरेंडर कर देता है. एक मदर जो किसी को अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने देगी, वो आपको आके अपना बच्चा देती है, ऐसे कहती डॉक्टर साहब प्लीज इसको अभी ठीक करो. इतना सरेंडर होता है, इतना पेन होता है. पेन एंड सरेंडर किया किसी ने और हमने 1% भी उस टाइम अपना कुछ सोच लिया, तो देन व्हाट इज द कर्मा दैट वी हैव क्रिएटेड, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, क्या लगता है? आज हम इतना कुछ सुनते रहते हैं, किसी ने अल्ट्रासाउंड एक्स्ट्रा ऐसे ही करा दिया, किसी ने तो सर्जरी एक्स्ट्रा करा दी, जरूरत ही नहीं थी, किसी ने स्टेंट एक्स्ट्रा डलवा दिया, जरूरत ही नहीं था. एंड एवरीबडी सेइंग बेचारे पेशेंट्स, उनके साथ क्या क्या हो रहा है आजकल. बेचारे पेशेंट्स नहीं है, बेचारे पेशेंट्स नहीं है. उसका नुकसान कितना कर लेंगे हम, किसी का थोड़े पैसों का ही कर लोगे, एक एक्स्ट्रा टेस्ट कर दिया तो क्या उतना ही हो जाएगा सिर्फ. बेचारे कौन, बेचारा वो होता है जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. जिसने ऐसा कर्म किया कि दर्द में आए हुए व्यक्ति को एक्सप्लोइट किया, ट्रस्ट करने वाले व्यक्ति को एक्सप्लोइट किया, वो कार्मिक अकाउंट सिर्फ पैसों का नहीं है, वो कार्मिक अकाउंट पेन और ट्रस्ट का भी है। तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आएगा वो सिर्फ पैसों के रूप से नहीं आएगा, वो पेन और ट्रस्ट के रूप में भी आएगा। ये जो पिछले साल में हमने बातें देखी हैं, ये है हमने ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट किया, लोग अब हमें ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ये ट्रस्ट का कॉन्सिक्वेंस आया है। अब अगर हमें इसको चेंज करना है, वी नॉट गोइंग टू चेंज देम, वी विल हैव टू चेंज द एनर्जी दैट वी आर सेंडिंग टू देम, रिस्पेक्ट देयर ट्रस्ट एंड दे विल ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। ट्रस्ट का रिटर्न ट्रस्ट मिलेगा, लेकिन कुछ और किया तो उसका रिटर्न भी। आजकल एक शब्द है, परसों एक कॉन्फ्रेंस थी वापी में, वी डिड अ लिटिल वीडियो फॉर दैट, द टॉपिक ऑफ दैट वाज एथिक्स इन सर्जरी एंड द कॉन्फ्रेंस वाज ऑफ द होल गवर्निंग बॉडी ऑफ सर्जन्स ऑफ द कंट्री। एथिक्स इन सर्जरी, एथिक्स इन मेडिकल प्रैक्टिस एक्चुअली वर्ड ही नहीं होना चाहिए, शब्द ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां हम एथिक्स इन बात कर रहे हैं इसका मतलब कुछ और है, तब तो हमें एथिक्स की बात करनी पड़ रही है, नहीं तो एथिक्स की बात क्यों करनी पड़ रही है। एथिक्स शुड बी द ओनली वे ऑफ लिविंग एंड वर्किंग, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। तो एथिक्स की क्यों बात कर रहे हैं हम, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ 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 थोड़ा थोड़ा, एंड वो थोड़ा थोड़ा अब नॉर्मल की डेफिनेशन में आ गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी से बात करो तो वो कहेंगे जब तक हम गिफ्ट नहीं देते तो हमारी तो मेडिसिन प्रमोट ही नहीं होती है। तो वो हमें कोई आईफोन दे रहा है, कोई हमें आईपैड दे रहा है, कोई हमें कोई कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए टूर दे रहा है। हीलर है, डिग्निटी, रॉयल्टी, इतनी दुआएं कमाओ हर महीने विदेश जाओ घूमने के लिए, किसी से एहसान लेकर क्या जाओ, ये कोई जीवन है? ये कोई जीवन है कि मुझे किसी से लेना पड़ रहा है कुछ? जो किसी से कुछ भी लेगा, कुछ भी लेगा, वो अपनी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। एहसान लिया ना, एहसान जो लेता है फिर उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ, यहां से जाने से पहले इकट्ठे कुछ ऐसा डिसाइड करके जाओ कि पूरी फ्रेटर्निटी में जो नॉर्मल की डेफिनेशन है वो चेंज हो जाए। ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। एक पेशेंट को कहीं भेजा, कंसल्टेंट का रेफरल, लैब का रेफरल, पैथोलॉजी उसका रेफरल, एमआरआई में भेजा उसका, करते 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 उस पेशेंट का बिल कितना बन गया, और हमने कहा ये सब कुछ तो नॉर्मल है, पेन में आए हुए को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पेन में आए हुए को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जीवन का पर्पस सिर्फ धन कमाना नहीं होता है, धन से क्या क्या आएगा, सामान ही आ सकता है सिर्फ। मनी कैन बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देर आर सम थिंग्स विच मनी कैन नॉट बाय। And what is it that money cannot buy? Money cannot buy happiness. Money cannot buy love. Money cannot buy health. Money can buy treatment. Money cannot buy relationships. ये चीजें कैसे कमाई जाती हैं? दुआओं से। जो physical चीजें हैं वो पैसों से आएंगी, जो energy की चीजें हैं वो energy से आएगी। Tuesday से हम जाएंगे, वही काम करेंगे, सब कुछ वैसा ही होगा, सिर्फ हमारा पर्पस ऑफ लाइफ थोड़ा डिफरेंट होगा कि धन कमाना है नहीं, दुआएं कमानी है, दुआएं कमानी है। जो दुआएं कमाएंगे वो धन कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? लेकिन जो धन कमाएंगे वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाएंगे। तो हायर चीज को कमाओ, लोअर चीज तो अपने आप आ जाएगी। अपने आप आ जाएगी। आज आप किसी के पास जाओ, आज आप एक बेकरी में जाओ, आपको 20 रुपए की 30 रुपए की ब्रेड लेनी है, आज भी वो दुकानदार मिलता है जो कहेगा मैडम ये फ्रेश नहीं है आप मत खरीदो ये आज। मिलता या नहीं मिलता? उसको तो वो फेंकनी पड़ेगी उसके बाद, उसके तो वो 30 रुपीज वेस्ट। अगर वो हमें दे देता तो हमारे 30 रुपीज चले भी जाते तो क्या बड़ी बात हो जाती, लेकिन उसने क्या किया, अपना नहीं सोचा, आपका सोचा। 30 रुपए उस दिन गवाए, कमाया क्या? दुआएं, आप दुआएं देंगे उसको या नहीं देंगे? आप घर जाके 4 लोगों को बोलेंगे पता है उसने क्या किया आज दुकानदार ने, उसने दी नहीं मेरे को, मैं उठा रहा तो 4 लोगों ने भी उसको क्या भेज दिया, कहेंगे बड़ा आजकल के समय में ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। उस दिन वो इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, उस दिन उसने धन नहीं कमाया, सिर्फ एक दिन, उस दिन उसने दुआएं कमाई। उसके बाद हम जीवन भर कौन सी दुकान पे जाएंगे, उसी की दुकान पे जाएंगे, और जिस जिसको हमने बताया वो भी कौन सी दुकान पे जाएगा। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएंगे, ये सर्टन है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखना है हमें, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है। नॉर्मल की डेफिनेशन सब डॉक्टर्स कर रहे हैं जी, सब कर रहे हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। सब कर रहे हैं तो फिर कॉन्सिक्वेंस भी आएगा। सो आई नीड टू राइट माई डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू वॉट आई वॉन्ट। कोई आया दर्द में आया, आपने उसको एक MRI के लिए भेजा, 12% कमाया, उसको तो पता भी नहीं चलने वाला है, लेकिन हमने अपना कर्म किया। इसका ऑपोजिट देखो कि आपने उसको भेजा और आपने उस लैब को बोला मेरी तरफ से जो पेशेंट आएगा उसको मेरा 12% कट, उसको कमीशन देंगे आप, उसको डिस्काउंट देंगे आप। आप सोचो वो पेशेंट आपको क्या देगा उस टाइम जब वो जाएगा उधर और उसको ये बात पता चलेगी, क्या देगा आपको? वो वहां जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट उसको कहता है आपका 4000 का बिल है, लेकिन जिस डॉक्टर ने आपको भेजा है ना उसकी वजह से आपको 800 रुपए डिस्काउंट। क्या मिलेगा उस टाइम, क्या मिलेगा उस टाइम? वो दुआएं जीवन में बड़े से बड़ी आने वाली संकट को फिनिश कर देती हैं। दुआओं में वो पावर है, दुआओं में वो पावर है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है लोग कहते हैं दुआ करो ठीक हो जाए। दुआ वो चीज नहीं होती जो उस टाइम की जाती है, दुआ वो चीज होती है जो जीवन की यात्रा पर इकट्ठी की जाती है अपने कर्मों से, अपने कर्मों से। तो यहां से जाने से पहले ये सब सोच के जाएं, वापस जाने के बाद छोटी 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 चीजें कौन सी करनी है उनको दें, उनके लिए जीवन इजी बनाएं। वो दर्द में आ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उस इलाज के लिए, और हम अपने 1, 2, 3, 4 अगर बनाएंगे और फिर कहेंगे आज लोग हमें ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे। इलाज किया धन कमाया, ट्रस्ट ना किया ना कमाया, तो एनर्जी एक्सचेंज तो हुआ ही नहीं। इफ फेथ कैन हील डाउट कैन स्लो डाउन हीलिंग। कर सकते हैं हम जाने से पहले, कर सकते हैं? 2 बैलेंस शीट है सारा दिन, 1 बैलेंस शीट बाहर, 1 बैलेंस शीट यहां। कोई ऐसा कर्म ना हो हमारे से, किसी के आगे हमें झुकना ना पड़े, किसी का एहसान हमें लेना ना पड़े, और किसी को दवा लिखने से पहले हमारे माइंड में एक थॉट नहीं आनी चाहिए कि मुझे उस कंपनी की लिखनी चाहिए। ये थॉट भी आई तो मेरा कर्मा डाइल्यूट हुआ है। कर्मा की, इसीलिए कहा जाता है कर्म की गति अति गुह्य है, इट्स वेरी डीप, इट्स अ हाई रिस्क बिजनेस, क्योंकि लोग ट्रस्ट में आ रहे हैं। मैं आज एक दुकान में जाऊं ये फोन खरीदूं और दुकानदार ने मुझे चीट किया, मुझे 2 दिन के बाद भूल जाएगा वो दुकानदार, लेकिन मैं एक हीलर के पास जाऊं एंड आई गेट चीटेड, जीवन भर नहीं भूलना। तो हाई रिस्क बिजनेस हो गया ना, हाई रिस्क हो गया। और ये कार्मिक अकाउंट सिर्फ इस जीवन में नहीं चलेंगे, ये जब अखबार पढ़ते हैं ना और कहते हैं इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम उसका सिर्फ ये डेस्टिनी देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि क्या करा था, क्या हुआ था, इसलिए आज ये हो रहा है। तो डरना है तो किससे डरना है, सिर्फ किससे डरना है, सिर्फ अपने कर्मों से जो गलत हो जाते हैं, बाकी तो जीवन में किसी और से डरना ही नहीं है। सही कर्म और मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरे को सुख देने वाला कर्म, दूसरे को सहयोग देने वाला कर्म। कलयुग में करने में थोड़े से एनर्जीज भी मिल सकते हैं आसपास से कि ये डिफरेंट क्यों करने लगे बाकी सब से, जो सब कर रहे हैं वो कॉपी करेंगे तो कलयुग बनेगा। हम ऐसा कुछ करें कि बहुत जल्दी लोग हमें कॉपी करें तब सत्युग बनेगा। दैट इज आवर चॉइस, वी हैव द पावर टू डू दैट। एंड द वर्ड एथिक्स इन मेडिकल प्रोफेशन शुड बी डिलीटेड वेरी सून। कि एथिक्स इन मेडिकल प्रोफेशन ये कोई वर्ड ही नहीं है। बिजनेस एथिक्स सुनते थे ना हम, बिजनेस एथिक्स वर्ड हुआ करता था ना, मेडिकल प्रोफेशन में एथिक्स का क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, शब्द ही नहीं आना चाहिए। एथिकल इज द ओनली वे ऑफ बीइंग, इट्स अ नेचुरल वे ऑफ बीइंग, उसको हमें कुछ करना नहीं है। यस, हम करेंगे यहां से जाके, एंजल्स करेंगे, जहां जहां हैं हम चीजों को बदलेंगे। यस, इवन इफ वी आर अलोन इन दैट वन ऑर्गेनाइजेशन वी विल बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। कम लेट्स सिट बैक फॉर 2 मिनट्स अगेन। I am an angel, परमात्मा का फरिश्ता हूं मैं। उसकी दुआएं और श्रेष्ठ कर्मों से I have become a healer। सबको सुख देने के लिए, सबका दर्द खत्म करने के लिए, इट्स माय फॉर्च्यून, ये मेरा भाग्य है श्रेष्ठ। मुझे आत्मा ने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए होंगे कि मुझे इतना सुंदर भाग्य मिला है। मैं आत्मा हर पल दूसरों को सुख देती हूं, दुआएं देती हूं, इस भाग्य को मुझे कई गुना आगे बढ़ाना है और अपने भाग्य से अनेकों का भाग्य बदलना है। Purpose of my life, सबको दुआएं देना और दुआएं कमाना। Every morning I go to work to earn blessings. मेरी एक सोच, मेरा एक बोल, मेरा एक व्यवहार किसी के दुख को बदल उसको खुशी देता है। ये मुझ आत्मा का भाग्य है। विश्व की इतनी आत्माएं मुझ पर विश्वास करती हैं, ये मुझ आत्मा का भाग्य है। मुझे उनको देना है। सदा विश्वास का पात्र बनकर रहना है। अपने से पहले उनका सोचना है, सिर्फ देना है, देना है, देना है। मैं सत्यों की देवात्मा हूं, देने वाली आत्मा।